ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जयैधवलङ्गते णाऊर्यसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अणञ्जणो नामो चन्दो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी भगवान के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। प्रथम अधिकार जो पेज दोष विहत्य नाम का अधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 117 पर आ गए, 117। कल हमने जब अंग बाह्यों की बात की थी और उसमें ये जो कृतिकर्म 6 प्रकार के बताए थे, और उसमें वो थोस्सामी दंडक के अंत में, यानी जो शिरोन्नति के बारे में थोस्सामी की बात आई थी, ये थोस्सामी दंडक क्या है इसके बारे में हमारी चर्चा चली थी। ये देवेंद्र भाई ने मूलाचार ग्रंथ लाया है, उसमें से अभी हम देखते हैं। ये थोस्सामी नाम का स्तवन है, उसको पढ़ना है, वो पाठ को बोलना, उसकी स्टार्टिंग थोस्सामी शब्द से होती है, उसको वो थोस्सामी दंडक कहते हैं। हाँ, वो क्या क्या है वो कृति, देखो क्रिया कर्म की प्रयोग विधि बताते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। और ये वाली, हाँ ये थोस्सामी यहाँ है, ये क्या क्या कौन कौन सी बातें क्या पढ़ना है। तो कृतिकर्म की जो प्रयोग विधि जो है, तो कहते हैं अथ देव वंदनायाम, देव की वंदना करने के लिए पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्वाचार्यां के अनुक्रम से जो पद्धति चली आई है, सकल कर्म क्षयार्थम, सकल कर्मों के क्षय करने के लिए भाव पूजा वंदना स्तव समेतम, भाव पूजा वंदना और स्तव करना है वो मुख से बोलना, स्तवन करना, इनके सहित चैत्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम, चैत्य भक्ति और कायोत्सर्ग मैं करता हूँ, ऐसे मुंह से बोलकर वो क्रिया की जाती है। इस चैत्यालय और चैत्य निजिनबिंब, इस प्रतिज्ञा को करके, पहले ऐसे प्रतिज्ञा करके इन्हें बोलते हैं, खड़े होकर पंचांग नमस्कार करें, पुनः खड़े होकर 3 आवर्त, कल हमने बात देखी थी ना आवर्तों की, 1 शिरोन्नति करके मुक्ताशुक्ति मुद्रा से हाथ जोड़कर सामायिक दंडक पढ़े। वो सामायिक दंडक में नमो अरिहन्ताणम है, वो चत्तारी मंगलम है, फिर वो पूरे उनके पाठ है, क्या क्या करे में बनते वगैरह, सामायम सव सावज जोगम पच्छक का मैं सावधयोग का मैं त्याग करता हूँ वगैरह, ये पाठ बोलने की पद्धति होती है। सामायिक को अंगीकार करते हैं ना शिकायत सरगा, उसके पहले ये पाठ बोला जाता है, और उसके बाद वो 3 आवर्त 1 शिरोन्नति करके 27 उश्वास में 9 बार नमोकार मंत्र जप कर, 27 उश्वास में 9 बार नमोकार मंत्र की पद्धति है, 9 बार नमोकार मंत्र होते हैं ना, उसमें 27 बार श्वास और उश्वास होना चाहिए। जैसे 1 बार नमोकार मंत्र कहते हैं उसमें 3 बार श्वासोश्वास होता है, अंदर लेना और छोड़ना है, अंदर लेना जैसे नमो अरिहन्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, जो कुछ है, यानी उतने स्लोली वो पद्धति है। कभी कभी केवल 27 श्वास करना ऐसा भी कहेंगे, और कहीं 9 बार नमोकार मंत्र कहना ऐसा भी है। और उसके बाद हाथ जोड़कर थोस्सामी पढ़े, थोस्सामी जो स्तव है वो बताया है, जो प्राकृत में है, कि थोस्सामी हम जिनवरे तिथेरे केवली अनंत जिने नर पवर लोय महिये विहुयर विहुरय मले महा महपन्ने। ये तो श्वेतांबरों में भी ऐसे, ये तो शब्द उसमें भी है ना, विहुय रयमले, विहुय रयमले है उसमें भी शब्द। हाँ, विहुय रयमले उसमें, हाँ, रजमलों से रहित। हाँ, वो ये तो वही बातें। लोय सुज्जो ययरे दम्मं तिन्तंकरं जिने वंदे अरहंते कित्तिसे चौबीसं चेविके वलिनो। ये वही बात है सब। एवं मय अभूत्वा विहोरे मला पहिन जरमरणा चौबीसं पिजनवरा तिथेरा में पसीयंतु। ये वही बात है वो, क्योंकि दोनों ही एक ही मूल धारा से चले हैं ना, तो ये मायामी में हम करवाते थे, तो यही बात सब है उसमें भी। तो ये थोस्सामी है, इसको थोस्सामी दंडक कहते हैं। सामायिक में पहले नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल और भी दो चार उसमें है, उसके बाद ये पढ़ा जाता है। कल इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया था, तभी हमने देखा। हम 117 पृष्ठ पर आते हैं। नहीं, बाद में पढ़ेंगे, अभी अपना विषय आगे बढ़ाए ना। हमने कल पढ़ा था, देखो 117 पृष्ठ पर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, नीचे से 12 भी लाइन अभी पढ़ेंगे, उसके ऊपर की दो लाइन अभी लेते। महाव्रत लेने के अनंतर एक अंतर मुहूर्त में ही मिला। 117 पृष्ठ पर नीचे से मैंने लाइन बताई, गौतम को चार ज्ञान और अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई। ये सभी रिद्धियों का वर्णन हमने धवला में भी पढ़ा था, कैसी कैसी उनकी रिद्धियां होती है। एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर बाकी सब उनके प्राप्त हो जाता है। हाँ, यानी वो चार इन रिद्धि आदि जो हमने देखे ना, इसमें भी हमने वर्णन पढ़ा था, अक्षिण महानस रिद्धि वगैरह वगैरह, यानी वो अमृत रसा श्रावी वगैरह, ये जो सारी रिद्धियों के नाम है वो उनके सहज रूप से प्रकट हो जाती है। रिद्धियां प्राप्त हुई और वे भगवान महावीर के मुख्य गणधर हो गए। इस कथानक से भी यही सिद्ध होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि महाव्रती गणधर के निमित्त से खिरती है। कल बात आई ना कि ऐसे कोई पात्र गणधर जैसा जीव होगा, जो गणधर वहां उन्हीं के सामने जाकर जिन्होंने दीक्षा महाव्रत अंगीकार किया है, ऐसे जीव के निमित्त से, क्योंकि उस जीव को वहां चार ज्ञान भी प्रकट हो जाते हैं। हाँ, प्रश्न आपका ऐसा है, यहाँ मुख्य गणधर है तो और भी गणधर होते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है मुख्य गणधर ही ग्रंथ लिखते हैं क्या? कोई भी गणधर ग्रंथ लिखते ही नहीं है, वो तो
छात्रों की रचना
जो होती है ना, तो वो तो यानी मौखिक ही होती है, और वो उनका उपदेश अन्य जीवों को दिया जाता है, फिर अन्य आचार्य भी उसको याद हो जाता है उनको। एक पाठी होते हैं ना, एक बार सुन लिया याद हो गया, क्योंकि ऐसे वो बुद्धि की खास कमाल है, उनके क्षोभ समय ऐसा पाया जाता है कि एक बार बात बस एक बार सुन लिया और उन्होंने ग्रहण किया। गणधर ने तो बीज पद सुने थे, ओमकार ध्वनि सुनकर ये सारे शब्दों की रचना तो गणधरों ने की, और फिर उनके जो द्वारा ग्रंथकर्ता उनको लिख कहा है, और भगवान को तो अर्थकर्ता कहा था, कल हमने देखा था। हाँ, अब एक प्रश्न यह रह जाता है कि दिव्य ध्वनि के खिरने के समय शब्द वर्गणाएं स्वयं शब्द रूप परिणत होती है या उन्हें शब्द रूप परिणत होने के लिए प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है? प्रयोग निरीक्ष हो यह दूसरी बात है। ये जो कहते हैं ना प्रायोगिक और वैसरसिक, विसरसा यानी नेचुरली होने वाले, प्रायोगिक यानी किसी के प्रयोग के द्वारा हो गए, भले वो प्रयोग निरीक्ष हो, जैसे भगवान की बात यहाँ लेनी है इसलिए कहते प्रयोग के कारण होती है कि कैसी होती है? प्रयोग यानी किसी के उसके पीछे प्रयत्न पूर्वक। प्रयोग, अच्छा प्रयोग निरीक्ष हो यह दूसरी बात है, पर बिना प्रयोग के शब्द वर्गणाएं शब्द रूप परिणत हो जाए यह संभव नहीं दिखाई देता है। ये विशेषार्थ बता रहे हैं, पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसी को फिर दोबारा समझा रहे हैं। प्रयोग दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर प्रयोग ही योग है, उससे तो शब्द वर्गणाएं आती हैं, ग्रहण होता है ना उसका, नवकर्म का ग्रहण होना ये तो योग के कारण होता है। मन वचन काय संबंधी परमाणुओं का ग्रहण योग के द्वारा होता है, तो शब्द वर्गणाएं आना अलग बात है, यानी उसका ग्रहण होना। और तालु आदि के संसर्ग से होने वाले बाह्य प्रयोग के निमित्त से, ये बाह्य प्रयोग यानी जैसे ताली बजाना, तो ये पुद्गल पुद्गल के साथ अड़ा, या उसमें हम कहते ना प्रतिघात होगा एक दूसरे से और वहां ध्वनि उत्पन्न हुई, आवाज उत्पन्न हुई, तो ये कहते हैं कि पहले में पहले क्या है, ये जो शब्द वर्गणा जो है, शब्द वर्गणा का ग्रहण तो योग के द्वारा होता है, और फिर जीभ का तालु किससे अड़ना या दांत के साथ टकराना, वहां उसके शब्द रूप परिणत हो जाती है। तो तालु आदि के संसर्ग से होने वाले बाह्य प्रयोग के निमित्त से, ये शब्दों को भी अलग अलग नाम है ना अक्षरों को, ये तालव्य शब्द, दंतव्य दांत के ऊपर अड़ती है तो ओठ के कारण जो होते हैं या गले में से निकलते हैं कंठ में से, तो उस बाह्य प्रयोग के निमित्त से शब्द वर्गणाएं शब्द रूप परिणत होती है। केवली के बाह्य क्रिया का सर्वथा अभाव तो माना नहीं गया है, सर्वथा अभाव की बात करते स्वामी समंत भद्र ने अपने स्वयंभू स्तोत्र में बताया है कि जिनदेव के मन वचन और काय की प्रवृत्तियां बिना इच्छा के होती हैं। इससे ऐसा लगता है उनके दिव्य ध्वनि के समय तालु आदि का व्यापार होता होगा। पर त्रिलोक प्रज्ञप्ति में तथा समोसरण स्तोत्र में बताया है कि भगवान की दिव्य ध्वनि तालु आदि व्यापार के बिना प्रवृत्त होती है। इसका यह अर्थ होता है कि जिस समय दिव्य ध्वनि खिरती है उस समय भी भगवान का मुख बंद रहता है। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकलता है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि मुखाग्र देश से ही प्रकट होना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मुखाग्र देश है मुख का अग्र भाग से ही प्रकट होगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर हरिवंश पुराण के 58वें सर्ग के दूसरे श्लोक में दिव्य ध्वनि का चारों मुखों से प्रकट होना लिखा है, तथा महापुराण के 23वें सर्ग के 69वें श्लोक में और पद्मचरित के दूसरे सर्ग के 195वें श्लोक में लिखा है, आदिनाथ तीर्थंकर के और महावीर तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि मुख कमल से प्रकट हुई, तथा महापुराण के 24वें पर्व के 82वें श्लोक में यह बतलाया है, तालु और ओष्ठ आदि के व्यापार के बिना दिव्य ध्वनि मुख से प्रकट हुई। हाँ, इसलिए उन्होंने उसके सर्ग के नंबर भी दे दिए। इससे यह निश्चित होता है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि यद्यपि मुख से ही खिरती है, पर साधारण मनुष्यादिकों को शब्दोच्चारण में जो तालु ओष्ठ आदि का व्यापार करना पड़ता है, तीर्थंकर देव को उस प्रकार का व्यापार नहीं करना पड़ता। सर्वांग में से कीर्ति ऐसा हम हमेशा कहते हैं, परंतु यहाँ तो ऐसी बात है ना कि मुख से निकलती परंतु अन्य कोई वहां ओठ या तालु इसका कोई हालचाल होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ उपासकाध्ययन नाम का अंग, ये कितवा नंबर का अंग है मालूम है? सातवा है। कौन कौन से अंग हुए? पहला कौन सा हुआ? आचारांग, सूत्रांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, न्यात्रु कथा या नाथ धर्म कथा, और ये अभी सातवा उपासकाध्ययन अंग। न्यात्रु कथा है ना, उसका नाम नाथ धर्म कथा है, उसी का दो नाम है उसके। देखो हम कहां से शुरू किया था उसको, वाक्य पर नाथ धर्म 114 में नीचे की लाइन। ये भी अंग सातवा। हाँ, सर्वांग में से निकलते ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, ये पुस्तकों में भी हमने अभी तक तो ऐसा ही पढ़ा था। और ऐसा है ना, हम मुख से बोलते तो एक कहने की भी पद्धति होगी मुखार अविंद से, यानी एक तो सामान्य कथन होता है और एक तो विशेष कथन होता है। हाँ, वो अभी हमने पढ़ा ना। हाँ, अभी उपासकाध्ययन की बात पढ़ेंगे। इस नाम का अंग, ये जो 11 प्रतिमाएं हैं श्रावक की, उनके नाम है यहाँ। दार्शनिक यानी वो दर्शन ये प्रतिमा है, और जिस को दर्शन प्रतिमा है ऐसे जीव को, उस श्रावक को दार्शनिक श्रावक कहेंगे, है ऐसे ही एक लगा के आगे आगे वाले बताएंगे। व्रतिक, सामायिकी, प्रोषधोपवासी, वो बासी हुआ, सचित्त विरत, रात्रि भक्त विरत, ये भक्त का अर्थ क्या होता है? भोजन। हाँ, रात्रि भोजन से जो विरत है, त्याग है, मनोवचन काया से, कृतकारित अनुमोदना से, सभी प्रकार से। नहीं तो हम कहेंगे रात्रि भोजन का हमें भी त्याग है, तो ये हमको इतनी प्रतिमा हो गई कि नहीं वो छठे नंबर की, कितने नहीं है। हाँ, ब्रह्मचारी, आरंभ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत, इन उपासकों के, उपासक कहो या श्रावक कहो एक ही बात है, 11 प्रकार के धर्म का वर्णन करता है। ये तो बाह्य अपेक्षा से उसका वर्णन है, परंतु ये प्रतिमाएं जो धारण की जाती है, सहज रूप से बाह्य में ऐसा आचरण होता है, उनके उतनी अंतरंग स्थिरता बढ़ती चली जाती, तभी तो वो ऊपर की है। तो सभी का पांचवा गुणस्थान, दार्शनिक हो या अंतिम उद्दिष्ट विरत वाला हो, दोनों को पांचवा गुणस्थान कहेंगे। परंतु पांचवें गुणस्थान में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के भेद हो गए, उसमें से ये 11 स्टेप्स अलग अलग बताई है। अंतकृत दश नाम का अंग, ये 8 नंबर का अंग, अंतकृत दशांग। हमने इसके वर्णन भी पढ़े थे ना, फिर दोबारा ये आ गई बात। अंतकृत दश नाम का अंग प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में, एक होता है तीर्थ काल और एक होता है शासन काल, मालूम है क्या है? हाँ, शासन काल। हाँ, देखो तीर्थ काल है ना, उनका समोचरण जितने काल तक चलेगा, उनका उपदेश, उसको कहेंगे तीर्थ काल। और शासन काल, उनके बाद आगे वाले नेक्स्ट तीर्थंकर जब तक नहीं होते तब तक उनका शासन काल। तो अभी महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है, उनका तीर्थ काल तो हो गया। हाँ, जब वो मोक्ष पधारे तो तीर्थ काल का तो अंत हुआ, परंतु शासन काल उनका चल रहा है, उन्हीं के उपदेश के अनुसार ये परंपरा चल रही है। तो कुंदकुंद आचार्य ने भी महावीर स्वामी को पहले नमस्कार किया ना, ऐसा नहीं कि मैं सिमंदर के पास डायरेक्ट जाके आया हूँ, तो उनसे मैंने उपदेश पाया है, मूल परंपरा है ना, वो परंपरा को भी बताना था। ये परंपरा कोई के क्या प्रूफ है आप जाके आए, तो ये मूल परंपरा बताने के लिए ये कहाँ से ओरिजिन है शास्त्र का, ये यहाँ भी जो परंपरा बता रहे ज्ञान प्रवाह से ये बात चालू आई है, इसलिए मूल धारा की बात यहाँ बता दी। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में चार प्रकार दारुण उपसर्गों को सहन कर, ये चार कौन से प्रकार है हमने पहले सुना था, हाँ, मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और नैसर्गिक, जिसको कहते हैं नैसर्गिक आपत्ति, सहन कर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त कर। हाँ, प्रातिहार्य ने अतिशय विशेष, उनके जो अतिशय हो जाते हैं उनको प्राप्त कर, निर्वाण को प्राप्त हुए सुदर्शन आदि दस दस साधुओं का वर्णन करता है। ये वर्षम वर्धमान तीर्थंकर के काल की बात है। देखो नीचे जो है ना फुटनोट, उसमें तीन नंबर जो है नीचे से सातवीं लाइन मिला, फुटनोट में नीचे से सातवीं लाइन, संसारस्य अंतः कृतो यही ते अंतकृतः, जिन्होंने संसार का अंत क्रिया किया है वे अंतकृत है। अब वो कौन कौन से, महावीर के काल के, नमित, तंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, सुदर्शन, वाल्मीक, बलित, निष्कम्बल, पालाम्बश अष्टपुत्र, पालाम्बष्टपुत्र इति एते दश वर्धमान तीर्थंकर तीर्थे। हमने इनके नाम समय ज्ञान चंद्रिका में भी पढ़े थे। एवं वृषभादीनां त्रयोविंशतेः तीर्थेषु अन्य अन्य च अनगारा दारुण उपसर्गान् निर्जित्य कृष्णकर्मक्षयात्। क्या कहते हैं, ऐसे ही वृषभ से लेकर अन्य जो 23 तीर्थंकर है उनके कालों में अन्य अन्य अनगार, अनगार का अर्थ मालूम है, हाँ, साधु मुनि, और गृहस्थ को क्या कहते हैं, सागर। यह अनगार यानी जो मुनिराज है, दारुण उपसर्ग निर्जित्य यानी परिश उसका सहन करके कृष्ण कर्म क्षयात्, कृष्ण ने संपूर्ण कर्म का क्षय करने से, अंतकृतः दश अस्याम वर्णन्त इति अंतकृत दश, इनका जिसमें वर्णन है 24 तीर्थंकरों के काल में हुए वो दस दस, उसको कहते हैं अंतकृत दशांग। उनके तीर्थ काल में ऐसे दस साधु हो जाते हैं कि दारुण उपसर्ग के पश्चात यानी उसी इसमें वो श्रेणी मान कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष भी चले जाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर उनके तो ये तो उपसर्ग तो मिट जाता है और उनके अतिशय प्रकट हो जाते हैं, प्रातिहार्य मिल और वो मोक्ष चले जाते हैं, ऐसे दस का वर्णन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे 99 नंबर का भी, अनुत्तरोपपादिक दश, अनुत्तरों में उपपाद यानी जन्म लेने वाले नाम का अंग 24 तीर्थंकरों में से प्रत्येक तीर्थंकर के समय में चार प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन करके वे तो मोक्ष चले गए थे। अब ये जो है मुनिराज वो क्या है, अनुत्तर विमान को प्राप्त हुए, दस दस मुनि श्रेष्ठों का वर्णन करता है। देखो नीचे हम जरा पढ़ेंगे फुट नोट नंबर एक, उपपादो जन्म प्रयोजनम एशाम एशांत इमे उपपादिका है, यानी जिसके अंत में उपपाद जन्म है प्रयोजन वो उसको कहते हैं औपपादिक। विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्ध्याख्यानी पंच अनुत्तराणी, ये पांच अनुत्तर विमानों के नाम है, कौन कौन से, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि, नाम के ये पांच अनुत्तर है। अनुत्तरेशु औपपादिका अनुत्तर उपपादिका है, अनुत्तरों में जो जन्म लेते हैं या उपपाद जन्म लेते हैं उनको अनुत्तरोपपादिक कहते हैं। उनके नाम बताए। ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिक, नंदन, शालीभद्र, अभय, वारिशेन, चिलात पुत्रा, इति एते दश वर्धमान तीर्थंकर तीर्थे। तीर्थे हुआ है, तीर्थे चाहिए। ऋषिदास धन्य, ऋषिदास एक नाम है, धन्य दूसरा नाम है, सुनक्षत्र तीसरा नाम है, एवं वृषभादी नाम त्रयोविंशते हे तीर्थेषु अन्य अन्य च दश दश अनगारा दारुण उपसर्गा निर्जित्य विजयादि अनुत्तरेषु उत्पन्ना इति एवं अनुत्तरोपपादिकाः दशास्यां वर्ण्यंत इति अनुत्तरोपपादिकदश। यानी ऐसे ये जो अनुत्तरोप में उत्पन्न होने वाले जो दस दस मुनिराज है प्रत्येक तीर्थंकर के काल में, उनका वर्णन जिसमें होता है उस अंग का नाम है अनुत्तरोपपादिक दशांग। अब आगे प्रश्न व्याकरण नाम का अंग, कितने नंबर है? हाँ, दसवां, ऊपर का नौवां नंबर का था। प्रश्न व्याकरण नाम का अंग आक्षेपिनी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी, इसका भी हमने विस्तार से वर्णन देखा था। आक्षेपिनी में क्या कथन होता है नहीं मालूम? स्वमत का मंडन, मंडन है ने उसको बताना, उसको सिखाना, उसको एस्टेब्लिश करना। और विक्षेपिनी ने परमत का खंडन, संवेदनीय ने वो धर्म संबंधी जो बात बताती है, और निर्वेदनी में संसार से जो वैराग्य लाया जाता है उसका स्वरूप बताया, देह संसार आदि। इन चार प्रकार की कथाओं का तथा निर्वेदनीय ने संसार देह संबंधी उसका स्वरूप बताकर उससे जो वैराग्य लाना, संवेदनीय ने धर्म फल बताते हैं, देखो देखो यहाँ नीचे लिखा है, ये 119 के नीचे फुटनोट जो है ना उसमें तीन नंबर लेना, नीचे से तीसरी लाइन मिला। आखेवणी कहा, कहा यानी कथा, सा यानी वह, विज्ञा चरणम वदिसदे जत्थ स समय पर समय गदा कथा तू विखेवणी नाम। आखेवणी कहा सा विचाचरण तेजत स समय पर समय गदा कथा दु विखेवणी नाम। संवेयणी पुन कहा नाणचरितम तव वीरिय इड्ढि गदा निवेयणी पुन कहा शरीर भोगे भवो घेय। आगे भी लिखा है तत्थ अखेवणी नाम छ दौव नव पय थानम सरुवम, छ द्रव्य और नव पदार्थों का स्वरूप, दिगंतर समयांतर निराकरणम शुद्धिम करेंती परुवेदी। यानी दिगंतर समयांतर यानी अन्य देशों में या अन्य मतों में जो कथन होता है उसका निराकरण और शुद्धि करके इसका कथन किया जाता है। विखेवणी नाम परसमयेन ससमयम दूसंती पच्छा दिगंतर शुद्धिम करेंती ससमयम थावंती छद्दव नव पयथे परुवेदी। विक्षेपणी में क्या कहते हैं, पर समय के द्वारा स्व समय जो दूषण लगाया जाता है उसको पहले बताकर पश्चात उनकी शुद्धि करके उसका निराकरण करके स्व समय का स्थापन किया जाता है, वही सही है ये बात बताई जाती है। और छह द्रव्य नव पदार्थों को कथन करते हैं। संवेयणी नाम पुण्य फल संकहा, संवेणी नाम में पुण्य फलों का आदि का कथन होता है, ये धर्म का लाभ क्या होता है उसकी बात बताए। निवेणी नाम पाव फल संकथा, उक्तम च कहकर फिर उन्होंने गाथाएं प्रस्तुत की हैं। और भी वो वही उस संबंधी गाथाएं अन्य अन्य ग्रंथों में है, उसका नीचे सर्वत्र उन्होंने उसके कहाँ कौन सी गाथाएं आई है वो बात बताइए। अब हमने जो देखी है प्रश्न व्याकरण में आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी और निर्वेदनी, इस प्रकार चार कथाओं का और क्या है इसका विषय, प्रश्न के अनुसार नष्ट यानी जो कोई चीज नष्ट हो गई है, मुष्टि यानी मुट्ठी में बंद की हुई है, चिंता यानी जिस संबंधी विचार चल रहे हैं, लाभ अलाभ सुख दुख जीवन और मरण का वर्णन करता है। विपाक सूत्र नाम का अंग यहीं पर ले लिया उन्होंने, दूसरा पैराग्राफ नहीं बनाया है, ये 11वां अंग है। विपाक सूत्र नाम का अंग द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर शुभ और अशुभ कर्मों के विपाक का यानी फल का वर्णन करता है, जिसलिए ये अंग इस प्रकार वर्णन करते हैं, इसलिए इन 11 अंगों का कथन स्व समय है इत हुआ इस प्रकार करना। अब 101 नंबर, चंद्र प्रज्ञप्ति सूर्य प्रज्ञप्ति जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति के भेद से परिकर्म 5 प्रकार का है। ये व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम और कहीं सुना था, कौन सा अंग निकालो। पांचवा अंग हमने 114 पृष्ठ पर देखा था, उस अंग का नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है, और यहाँ जो दृष्टिवाद अंग है उसमें जो परिक्रम नाम का जो भेद है उसका, उसमें भी ये व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का आता है, इसमें भी उसमें से चंद्र प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रम चंद्रमा के विमान आयु परिवार वृद्धि गमन हानि वृद्धि का तथा सकल ग्रासी अर्धभाग ग्रासी और चतुर्थ भाग ग्रासी ग्रहण आदि का वर्णन करता है। ये पूरा जो खगोल शास्त्र आदि है उसका वर्णन तो ये जीनागम से ही ले लिया है, हम पहले से ही बता सकते हैं ना कब ग्रहण होगा क्या बातें होती है, ये तिथियों का क्षय होता है नहीं होता है, ये तो चंद्र का या सूर्य का जो चार क्षेत्र है ना उसका गमन क्षेत्र, वो कैसे कैसे गमन करता है क्या होता है उसके पद्धति से उसका सारा गणित किया जाता है, ये चंद्र प्रज्ञप्ति में सब पाया जाता है। सूर्य प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रम सूर्य संबंधी आयु मंडल परिवार रिद्धि प्रमाण गमन अयन और उत्पत्ति के कारण आदि का वर्णन करता है। जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रम जम्बुद्वीप के कुलाचल, ये कुलाचल किसको कहते मालूम है, हाँ, कुलाचल नाम के 6 पर्वत है, जम्बुद्वीप 1,00,000 योजन का है, उसमें आड़े ऐसे 6 पर्वत है, वो 6 पर्वतों के द्वारा 7 विभाग हो जाते हैं, सबसे नीचे का भरत क्षेत्र फिर हिमवत पर्वत, इस तरह से एक क्षेत्र एक पर्वत एक क्षेत्र एक पर्वत, तो नीचे से क्षेत्र से पर्वत दुगुना ऐसे चौड़ाई में और उससे आगे वाला क्षेत्र दुगुना उससे आगे वाला पर्वत दुगुना, इस तरह से उसके विभाग हो जाते हैं। तो कुलाचल मेरु तो पता है, ये हर एक द्वीप में सेंटर में मेरु है, जैसे जम्बुद्वीप के सेंटर में मेरु है, और कितने कहां कहां पर है, हाँ 5 मेरु कहां पर है, हाँ कौन सा है, धातकी खंड, हाँ ए बाजू ने एक पूर्व में एक पश्चिम में, पुष्कर अर्ध में भी पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर, तो पहले पूर्व को समझना कि पहले पश्चिम को नाम किसका लेना पहले पूर्व को, तो अभी 5 मेरु के नाम बताओ, सुदर्शन विजय अचल विद्युन माली और मंदर, इसमें पहले पूर्व फिर पूर्व पश्चिम ऐसा लेना। तालाब क्षेत्र वेदिका वनखंड व्यंतरों के आवास और महानदियों आदि का वर्णन करता है। जो द्वीप सागर प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रम है, वह द्वीपों का और सागरों का तथा उनमें स्थित ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी देवों के आवासों का और प्रत्येक आवास में स्थित अकृत्रिम जिन भवनों का वर्णन करता है। ज्योतिषी उसके ऊपर और व्यंतर तो समुद्र के तट पर भी होते हैं, उसके सतह पर भी होते हैं और वहां से लेकर 1,00,000 योजन तक के ये जो हाइट है ना, उसमें अलग अलग लेवल पर उनके आवास वगैरह पाए जाते हैं। 1,00,000 योजन तक अलग अलग व्यंतरों के अलग अलग आवास होते हैं। ज्योतिषी तो हमें मालूम है, 790 से लेकर 900 योजन तक का जो पूरा पट्टा है उसमें सारे ज्योतिषी विमान पाए जाते हैं और उसमें ज्योतिषी देव पाए जाते हैं। जो व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का परिक्रम है, वह रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के जीव और अजीव द्रव्यों के तथा भव्य सिद्ध अर्थात भव्य और अभव्य सिद्ध अर्थात अभव्य जीवों के प्रमाण और लक्षण का तथा अनंतर सिद्ध और परंपरा सिद्धों का तथा अन्य वस्तुओं का वर्णन करता है। अनंतर सिद्ध है ना वो जो बाद में अभी सिद्ध हो जाए होने वाले, परंपरा है ना परंपरा से जो हो जाएंगे। नीचे कुछ लिखा है क्या? सूत्र अधिकार। अब ये परिक्रम हो गया, ये 12वें अंग का भी सूत्र। अंग 12वें का नाम क्या है मालूम है? हाँ, दृष्टिवाद। ये दृष्टिवाद अंग के भेद चल रहे हैं। यानी 12वें का ये दूसरा भेद। ये सूत्र नाम का अर्थाधिकार है, वह जीव अबंधक ही है, अलेपक ही है, अकर्ता ही है, निर्गुण ही है, अभोक्ता ही है, सर्वगत ही है, अणुमात्र ही है, निश्चेतन ही है, स्वप्रकाशक ही है। ये सब एकांतवादी बता रहे हैं, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ। यानी ये जो मिथ्या मान्यताएं है उनका वर्णन करता है। ऐसा जीव नहीं है क्या? सर्वथा स्वप्रकाशक है? क्या सर्वथा पर प्रकाशक है? तो नहीं है। तो पर प्रकाशक ही है, नास्तित्व रूप ही है इत्यादि रूप से नास्तिवाद, ये नास्तिवाद हो गए नास्तित्व रूपी, क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, ज्ञानवाद और वैनयिकवाद का तथा अनेक प्रकार के गणित का वर्णन करता है। ये एकांतवादी जो है, ये वाद यानी उस जो कथन है उनका, वो दूषित कथन है, परंतु कैसे कैसे मान्यताएं जीवों की उनका यहाँ वर्णन है। तो कोई मानेगा कि वो स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक है ही नहीं सर्वथा, तो ये एकांतवादी हो जाएगा, क्योंकि जीव स्वपर प्रकाशक है और उसको एकांत से या तो पर प्रकाशक ही है मानना या स्वप्रकाशक ही मानना। ये ऊपर जो सारे ना अबंधक ही है, अलयपक ही है, वो ही है वाले जो है सारे एकांत मतवादी है, उनकी मान्यता कैसी है उसको यहाँ बताया है। अब कौन से कितने मत है उसको ऊपर गाथा में बताया। देखो, असिधि सदम किरियाणम अक्किरियाणम च आहुचुलसीदिम सत्तठनाणीनम वेणयाणम च बत्तीसम सत्तठनाणीनम। क्रियावादियों को वादियों के 180 असीदि सदम, असीति शत, 180 शत ने 100, असीति ने 80 है। अक्रियावादियों के 84 चुलसीदिम, अज्ञानियों के 67, एक्चुअली 67 है वो, 67 लिखा है, 67 67 और वैनयिकों के 32 भेद कहे हैं। अब ये तो कैसे कैसे उसके कॉम्बिनेशन वो कर्म कांड में वो लिए थे आपको याद होगा तो पढ़ाई इतना तो याद है। अच्छा है। गोमर्सन में जीव कांड में ये ऊपर वाली बात है वो अबंध की अलेप की कौन से नए से क्या है जीवो कत्ताय भूताय वो उसमें आया है। नहीं नहीं उसके मैं क्या कहना थी उसमें तो ये बात बताई है परंतु उसके भंग कैसे कैसे होते हैं ये टेबल से वो कर्म कांड में ज्यादा मैं क्या बताना चाहती हूँ ये उसमें कैसे कैसे वो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये टेबुलर फॉर्म में बात कर्म कांड में ली है यहाँ तो बताई ही है परंतु उसके विस्तार से जो वर्णन आता है ना उनके वो तो अस्थि नास्ति जीव वगैरह लगा कर फिर उसमें वो घटित किया है वो अधिक विस्तार से वहाँ आई है बात इसी पेज में। देखो अभी जो ऊपर लिखा है ना अनंतर सिद्ध और परंपरा सिद्ध नीचे से नीचे के लाइन सबसे न विद्यते अंतरम व्यवधानम अर्थात समयेन येषाम ते अनंतराः ते च ते सिद्धाः अनंतर सिद्धाः सिद्धत्व प्रथम समय वर्तमाना इति अर्थः विवक्षिते प्रथमे समय यः सिद्धः तस्य यो द्वितीय समय सिद्धः स परः तस्यापि तृतीय समय सिद्धः स पर एवं अन्येपि वाच्याः परे च परे च इति विप्सायां पुरुषोदरादय इति परंपर शब्द निष्पत्ति परंपराश्च ते सिद्धाः च परंपर सिद्धाः विवक्षित सिद्धस्य प्रथम समयात् प्राक् द्वितीयादि समयेषु अतीतात् धाम यावद् वर्तमाना इति भावः। क्या कहते हैं अनंतर सिद्ध ने जिसमें वो समय का अंतर छोड़कर समय का भी अंतर नहीं है उसको कहेंगे अनंतर सिद्ध और परंपरा सिद्ध ने पहले समय में सिद्ध है दूसरे समय में सिद्ध है तीसरे समय में सिद्ध है चौथे समय में भी वे सिद्ध है ये परंपरा सिद्ध है। अनंतर सिद्ध ने एक समय का अंतर छोटे बिना जो सिद्ध है वे अनंतर सिद्ध उन्हीं को परंपरा सिद्ध परंपरा ने प्रत्येक समय में वो सिद्ध है वो परंपरा सिद्ध और अनंतर सिद्ध ने नेक्स्ट समय में सिद्ध है वो अनंतर से हमने वो पहले पढ़ी थी ना वो अनंतरोपनिधा और परंपरोपनिधा प्रति समय निषेक की बात करेंगे वहां अनंतर उपनिधा कहा था और गुनाहानी गुनाहानी की बात करेंगे तो परंपरा कहा था यहाँ तो कुछ अलग अपेक्षा से बात है यानी समय का भी अंतर छूटे बिना वो सिद्ध ही है ये बात वहां बताएंगे। देखो हमने ये 66 नंबर के गाथा पढ़ी उसका अर्थ भी पढ़ा 122 पृष्ठ पर इस गाथा में कहे गए 363 समयों का वर्णन समय शब्द आए ना हाँ तो 363 समय ने मत हाँ कैसे मत है वो पाखंडी मत है परमत है इसमें स्व समय नहीं है वर्णन सूत्र नाम का अर्थाधिकार करता है यह पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य समझना चाहिए ये सारे पर समय है सर्वथा वाले विशेषार्थ क्रिया कर्ता के बिना नहीं हो सकती है और वह आत्मा के साथ समवेत है ऐसा क्रियावादी मानते हैं। नीचे क्या लिखा है तीन में कहाँ है तीन संख्या कहाँ लिखी दो तीन चार पांच हाँ जीवादि पदार्थ सद्भावो अस्ति इति एवं सावधारण क्रिया अभ्युपगमो एषां ते अस्ति इति क्रियावादिना नहीं यहाँ क्या कहते हैं क्रिया जो है वो कर्ता के बिना नहीं हो सकती और वह आत्मा के साथ समवेत है समवाय से वो जुड़ी हुई है ऐसा कुछ उनका अटपटा मानना है वे क्रिया को ही प्रधान मानते हैं ज्ञानादिक को नहीं तथा वे जीवादि पदार्थों के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं। अस्तित्व एक, स्वतः परतः, नित्यत्व और अनित्यत्व, ये चार। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये नौ पदार्थ, तथा काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव, ये पांच। इस प्रकार इन सब के परस्पर गुणा करने पर स्वतः, ऊपर लिए ना, स्वतः नहीं परता, जीव काल की अपेक्षा है ही। देखो, ये मैं ये टेबल बताना चाहती थी, ऐसे टेबल कर्म कांड में आए हैं। क्या क्या उन्होंने, नीचे का टेबल देखो और ऊपर जो हमने पढ़ा ना, अस्तित्व एक, तो उसको जैसे हम, आपको याद होगा तो प्रमाद के भेद कैसे अलग अलग, विकथा को एक लाइन में लिखो, फिर कषायों को एक लाइन में लिखो, इंद्रियों को एक लाइन में लिखो, फिर स्नेह और निद्रा, वैसे यहाँ पर एक लाइन में अस्थि लिखा। नीचे के कॉलम में सेकंड लाइन में क्या लिखा, स्वतः परतः, यानी स्व से पर से, स्वतः परस यानी स्व से और पर से, फिर नित्यत्व और अनित्यत्व, ये चार हो गए। उसके बाद ये नौ पदार्थ, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, फिर उसके नीचे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव। अभी उसके कॉम्बिनेशंस करेंगे कैसे, तो देखो ऊपर क्या लिखा, स्वतः अस्थि तो सबके पास है ना, तो है वो रखेंगे तो वो अस्थि हो जाएगी, तो स्वतः जीव प्रत्येक कॉलम में से एक एक लेना है और उसके कॉम्बिनेशंस करना है। तो पहला कैसे लिए, स्वतः जीव काल की अपेक्षा है ही, यानी ऊपर की अस्थि ली। अब दूसरा कौन सा होगा कॉम्बिनेशन, परतः, अभी वो नीचे के कॉलम में ही रखना है, जीव काल की अपेक्षा है ही। तीसरा कैसा होगा, हाँ, नित्यत्व से जीव काल की अपेक्षा है ही, फिर अनित्यत्व पर घटाएंगे, इस तरह से उसके नंबरिंग करेंगे हम। तो फिर हम अनित्यत्व तक आ गए, फिर स्वतः को लेना और अजीव पर घटाना, अभी जीव के बदले ये सब में घटाना, तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, अस्तित्व एक ही है वाला है, तो उसको एक मल्टीप्लाइड बाय चार, उसको मल्टीप्लाइड बाय नौ और उसको मल्टीप्लाइड बाय पांच, हाँ कितने हो गए ये सब, 180, हाँ, इसलिए उसने 180 बात बताई, 180 भेद हो जाते हैं। अब यहाँ जो संख्या लिखी वो क्या है, ऐसा आपको प्रश्न होगा, हाँ, नीचे कितने हैं, पांच है, हमको पांच गुना भी आसान करने के लिए, स्वतः परता ये कितने, चार है, पांच गुना चार 20, और ये नौ पदार्थ, 20 × 9 180 हो गए ना, तो 180 टोटल उसके कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन हो गए। ये हमने बदले ना, स्वतः पर हमने जीव काल और अस्थि लगाई, फिर परतः पर जीव काल अस्थि लगाओ, चारों पर जीव पर घटित किया और काल पर घटित किया, फिर अजीव पर और काल पर घटित करो, फिर पुण्य पाप ऐसे नौ पर और काल पर घटित करो, फिर नौ की बात हो गई, फिर अभी आना ईश्वर पर स्वतः जीव ईश्वर और अस्थि ऐसा लेना उसको, इस तरह से कॉम्बिनेशन, उसके नंबरिंग भी उसी प्रकार से हो गए। अब ये लिखा है ना, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, फिर नीचे 0, 4, 8, 12 ये कैसे लिखा, तो प्रमाद के टेबल्स कैसे करना हमने सीखे थे। हम आपको पूछेंगे पहला नंबर कौन सा था, स्वतः जीव काल से अस्थि है, हम पूछेंगे आपको 100 नंबर का कौन सा होगा कॉम्बिनेशन, निकालो 100 नंबर का कैसा कहेंगे। तो अभी ये जो संख्या लिखी है इनकी टोटल करना, उसकी टोटल करने के लिए जिन जिन कॉलम में से हम संख्या लेकर 100 टोटल होगी उसको हम कहेंगे। अब निकालना, मैंने भी देखा ना, मैं आपके सामने देख रही हूँ, बोलो। आत्मा बहत्तर, देखो 100 निकाल है ना, तो नीचे के कॉलम में से मैक्सिमम बड़ी संख्या हम लेंगे। 108 तो नहीं ले सकते, तो 72 लेना, और 72 में अभी कौन सी लेंगे, 32 तो नहीं ऐड कर सकते। हाँ तो निर्जरा 24 को ऐड किया तो कितना हो गया, हाँ 96 हो गए। अभी उसमें अनित्यत्व डालेंगे, अस्थि को कुछ नंबरिंग ही नहीं ना, अस्थि को एक्चुअली नंबरिंग ही नहीं है, वो है में सबको ही है लिया उन्होंने, अनित्यत्व को लेना है। अनित्यत्व, निर्जरा, आत्मा, अस्थि, हर एक में स्वतः नहीं आएगा, चार में से कोई एक आएगा ना, या स्वतः या पसरता या नित्य या अनित्य। इनके टोटल 100 हो गए, तो ये 100 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो ये होगा। तो ये कैसे उन्होंने लिखा कैसे, तो ऊपर तो 80 सबके लिए कॉमन लिखी है, अब ये स्वतः परता नित्यत्व अनित्यत्व के लिए 1 2 3 4 नाम दिए। अब नीचे की जो लाइन है, स्टार्टिंग में तो 0 रखा, और फिर अजीव के लिए ऊपर लास्ट में कौन सा था, अनित्यत्व का नंबर 4 था, तो यहाँ 4 लिखा, और आगे की संख्या 4 4 से बढ़ते हुए लिखी, 4 8 12 16 20 24 28 32। अब इसके आगे का टेबल, काल को 0 देना, और ईश्वर को कितना, ऊपर के जो अंतिम जो कॉलम है, अनित्यत्व के 4 और मोक्ष के 32, वो मिलकर 36 होते, वो उसको 36 रखना, और आगे आगे वाले 36 36 से बढ़ाना, तो 36 72 108 144। ये यंत्र बनाने का तरीका है, टेबल। अब 150 नंबर का कौन सा होगा, बोलो। हाँ मिल गए, स्वभाव अजी और परता है ना, यानी परता अजीव स्वभाव है, इस तरह से उसके कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं उसको, है ना, समुदिष्ट नष्ट। पहले बताएंगे नंबर कौन सा है, फिर आपको उसके वो बताना है, यदि हम बताएंगे ये कौन सा नंबर का है तो वो भी आपको ढूंढना है। हम ऐसा कहेंगे कि स्वतः मोक्ष ईश्वर से है, वो कितने नंबर का होगा, नंबर है ना, 69 हो जाएगा, इस तरह उसको निकालते हैं। ये हमने प्रमाद में बहुत विस्तार, आप थी नहीं, नहीं थी तभी, यहाँ शाम को लिया था। अभी भूल गए, वो बात नहीं, मैं एटलीस्ट देखा था, इतना तो याद है ना, हाँ सुना था। अभी हम नीचे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा ना, इन सब भेदों का द्योतक कोष्टक इस प्रकार है, ये टेबल है, यंत्र जिसको कहते हैं कोष्टक हम कहेंगे। श्वेतांबर टीका ग्रंथों में जीवादि 9 पदार्थ, स्वतः और परता ये 2, नित्य और अनित्य ये 2, तथा काल स्वभाव नियति ईश्वर और आत्मा ये 5, इस प्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर जीव स्वतः काल की अपेक्षा नित्य ही है, अजीव स्वतः काल की अपेक्षा नित्य ही है, इत्यादि रूप से 180 भेद बताए हैं। अब अक्रियावादी वो नास्ति का कथन, जीव पदार्थ ही नहीं है, इस प्रकार कथन करने वाले अक्रियावादी कहे जाते हैं। नीचे लिखा है देखो फुटनोट में, नास्ति एव जीवादिक पदार्थ इय एवं वादिनः अक्रियावादिनः, यानी जीवादिक पदार्थ नहीं ही है, पदार्थ ही नहीं है, ऐसे कहने वाले अक्रियावादी ये क्रिया के सर्वथा अभाव को मानते हैं। नास्ति यह 1, स्वतः परतः ये 2, अभी नीचे के टेबल के साथ आप देखना उसको, जीवादि 7 पदार्थ, यहाँ जीव अजीव आश्रबंध समय निजरा मोक्ष को लिया है, तथा कालादि 5, वे ही 5 लिए, इस प्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर, अभी वहां चार थे ना, स्वतः परतः नित्य और अनित्य, अब यहाँ नित्य अनित्य को नहीं लिया, स्वतः और परतः लिया, तो यहाँ बोलो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, स्वतः परता दो है हा? देखो कितना है, आसान है ना, दो गुना सात गुना पांच, सत्तर हुए ना, पांच दिन दस सात, सात दुनी चौदह पंचे सत्तर, नौ नहीं है सात है, हाँ वो नियति और काल की अपेक्षा नास्तित्व कहेंगे, वो बाद में बताएंगे, वो दूसरे ऐड करना है, उनमें ऐड करना है अलग से, हाँ शेष चौदह भेद अलग से बताए उन्होंने, ये जो हमने टेबल देखा उसमें तो सत्तर ही होते हैं, देखो हमने तीसरी लाइन पढ़ेंगे, इस प्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर स्वतः जीव काल की अपेक्षा नहीं है, परतः जीव काल की अपेक्षा नहीं, इत्यादि रूप से अक्रियावादियों के सत्तर भेद हो जाते हैं, तथा सात पदार्थों का नियति और काल की अपेक्षा नास्तित्व कहने से चौदह भेद और होते हैं एक्स्ट्रा, कौन से सात पदार्थों के नियति और काल की अपेक्षा नास्तित्व, ये उसमें स्वतः और परतः लगाए बिना और उसमें काल और नियति ये दो ही लिए, इसलिए उसके चौदह भेद और होते हैं, इस प्रकार अक्रियावादियों के कुल भेद चौरासी हो जाते हैं। अब पहले पूर्वोक्त सत्तर भेदों का ज्ञान करने की कराने के लिए कोष्ठक देते हैं, ये जो अभी हमने पहले जैसे देखा था वहां अस्थि और फिर चार पदार्थ रखे थे, यहाँ नास्ति फिर स्वतः परतः फिर इसको कहते हैं जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये सात लिखे और उसके नीचे काल ईश्वर आत्मा नियति और स्वभाव, इनमें भी वही नंबरिंग है, ऊपर स्वतः परता के लिए एक दो लिखा फिर जीरो, फिर ऊपर का जो लास्ट था दो वो अजीव को दिया, फिर दो दो से बढ़ते हुए दो चार छः आठ दस और बारह, उसके नीचे के कॉलम में काल को जीरो दिया शून्य और ईश्वर के नीचे चौदह नंबर, क्योंकि आगे हाँ ऊपर के लास्ट कॉलम में दो और बारह मिलकर चौदह होते हैं और आगे के चौदह चौदह से बढ़ते हुए होंगे, और शेष चौदह भेदों का कोष्टक ऊपर नास्ति रखा फिर सात पदार्थ लिखे, नीचे नियति और काल में नियति को शून्य नंबर और काल को ये मोक्ष के कॉलम में सात नंबर था वो वहां दिया सात, इस तरह से उसका नंबरिंग होगा। श्वेतांबर टीका ग्रंथों में जीवादि सात पदार्थ स्वर पर ये दो तथा काल यदृच्छा नियति स्वभाव ईश्वर और आत्मा ये छह, इस प्रकार इनके परस्पर गुणा करने से अक्रियावादियों के चौरासी भेद गिनाए हैं, उन्होंने उसमें छह कर दिए। सात सकुम बेचालीस दुना। अब अज्ञानवादी, जो अज्ञान को ही श्रेयस्कर मानते हैं वे अज्ञानवादी कहे जाते हैं। इस मत से प्रमाण इग्नोरेंस इज ब्लिस, याद आई क्या? कहते हम नहीं जानते तो अच्छा था, ये कर्मों की बात जानने लगे तो डर लगने लगा, पहले कैसे बिंदास थे। इनके मत से प्रमाण समग्र वस्तु को विषय करने वाला नहीं होने से किसी को भी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। प्रमाण यानी ज्ञान अच्छा है। इन अज्ञानवादियों के जीवादि नौ पदार्थों के अस्थि आदि सात भंगों पर लगाने से त्रेसठ भेद हो जाते हैं, यानी जीवादि नौ पदार्थ और अस्थि वगैरह सात भंग, अभी ऐसा है ना, ये मान्यता वाले होते हैं ना, हमें लगता है कैसा अटपटी है, कैसा नहीं ही है, मोक्ष भी नहीं है, जीव ही नहीं है, ऐसा भी मानने वाले हैं ना, ये शरीर ही मैं हूँ, आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, ये मिथ्या ही मान्यता है, तो उसके लिए कोई बेस ही नहीं होता है उनके लिए। आकाश के फूल के समान ऐसे हो तो अभी देव संबंधी मान्यता है, ऐसे कोई विचार भी करेगा तो ऐसा कोई देव हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं ना मन में। हाँ, तो मान्यता वाले है इसलिए उनको स्थापित भी कर दिया, ये अज्ञानवादियों के 63 भेद। तथा एक शुद्ध पदार्थ को अस्थि नास्ति और अवक्तव्य पद लगाने से 4 भेद और हो जाते हैं। इस प्रकार अज्ञानवादियों के कुल भेद 67 होते हैं। यानी कहाँ कहाँ उसमें और इसमें फर्क आया है श्वेतांबरों में और दिगंबरों में, उन्होंने भी 84 माने हैं, परंतु उसका भेद अलग टाइप से किया है, कॉम्बिनेशन अलग से बताया। उनके ग्रंथों में भी अज्ञानवादियों के मतों का निरूपण है ना, तो वहाँ कैसे कैसे कॉम्बिनेशन वाले उन्होंने किए हैं वो बता रहे हैं। श्वेतांबरों ने पहले लिखा, ऐसा कहाँ आया है? यानी उन्होंने भी रचना की है, परंतु उन्होंने तो बाद में किए ना, उनके पास तो 12 अंग थे भी नहीं है। हाँ, मेरे पढ़ने में नहीं है, आप देखा ना। वर्ष के बाद नहीं, वो तो भद्रबाहु के बाद चालू हो गया है, वो तो 500 और कुछ साल के बाद। हाँ, ये वो उसके वह कि उन्होंने उस सभा में उनको बुलाया था, वे नहीं गए थे, और उनके पास वो को स्थूल भद्र को ये आके वहाँ पढ़ा था, परंतु 12वें अंग का उसको ज्ञान नहीं हुआ था, तो उन्होंने 11 अंगों में से जो कुछ रचना की है, ऐसा भी वो बात इसमें है। ये लिखित रूप से होने का नहीं, उनके भी वहाँ सभा हुई थी, इतना इसमें आया है। हाँ, इसलिए वो मानते हैं हमारे मूल हैं। क्योंकि नाम तो वही रखे ना उन्होंने, मूल जो परंपरा चली थी नाम तो वही रखे, इसीलिए तो लोगों में तो कंफ्यूजन और जो विश्वास होता नहीं, हमारे मूल है, अभी इतने सालों के बाद वही कहेंगे हमारा ही मूल है। हाँ, ये तो 67 हो गए। श्वेतांबर टीका ग्रंथों में जीवादि 9 पदार्थों को सत आदि 7 भंगों भंगों पर लगाने से, 7 भंगों पर लगाने से 63, और उत्पत्ति को सत आदि प्रारंभ के 4 भंगों पर लगाने से 4। इस प्रकार अज्ञानवादियों के 67 भेद कहे। भेद उन्होंने भी उतने ही कहे, पर कॉम्बिनेशन अलग बताया। ये कौन कौन हुए? क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी। अब जो वैनयिक है, जो समस्त देवता और समयों को समान रूप से स्वीकार करते हैं, समय ने सभी मत, अन्य अन्य दर्शन, हम कहते हैं विनय मिथ्यात्व है, उनको वैनयिक कहे जाते हैं। इनके यहाँ स्वर्गादि का मुख्य कारण विनय ही कहा गया है। इन वैनयिकों के देव, राजा, ज्ञानी, यति, वृद्ध, बाल, माता और पिता, इन 8 की मनोवचन काय और दान के साथ विनय करने से 32 भेद हो जाते हैं। श्वेतांबर टीका ग्रंथों में भी वही नहीं के इसी प्रकार भेद गिनाए हैं। इस प्रकार क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67, वैनयिकों के 32, ये सब मिलाकर 363 परसमय होते हैं। इन सब का कथन सूत्र नामक अर्थाधिकार में किया है। ये कौन से का भेद चल रहा है अपना? दृष्टिवाद का दूसरा भेद हो गया सूत्र। अब दृष्टिवाद का तीसरा भेद, 12वें अंग का तीसरा भेद। हाँ, वो नहीं लिखा, बाद में लिखेंगे शायद। हाँ, कुछ प्रश्न था? नहीं। जो प्रथमान योग नाम का तीसरा अर्थाधिकार है, दृष्टिवाद का तीसरा अर्थाधिकार, वह 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायणों के पुराणों का, पुराण यानी उनके जो कुछ चरित्र जो है, तथा जिनदेव, विद्याधर, चक्रवर्ती, चारण रिद्धिधारी मुनि और राजा आदि के वंशों का वर्णन करता है। अलग अलग वंश कैसे चले आ रहे उसका वर्णन, यानी उनके पुत्र कौन, उनके पुत्र कौन, उनके वो लंबी चौड़ी वो सारी लिस्ट बताएंगे उसमें। यह हो गया प्रथमान योग। अब पूर्वगत, ये 12वें अंग का चौथा भेद, पूर्वगत नाम का चौथा अर्थाधिकार, उत्पाद, व्यय और द्रव्य आदि धर्म वाले नाना प्रकार के पदार्थों का वर्णन करता है। ये उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व वगैरह हमने उसके नाम भी देखे थे, उसका वर्णन है। अब 12वें अंग का जो पांचवा भेद है उसको बताएंगे। चुली का नाम है इसका। जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता और आकाशगता के भेद से चुली का नाम का पांचवा अर्थाधिकार पांच प्रकार का है। उनमें से जलगता नाम की चुली का जलस्तंभन और जल में गमन के कारणभूत स्तंभन ने उसका रोक देना या उसका छेद करना। हाँ, और जल, हाँ, 10 कमांडमेंट्स याद आ गए। और जल में गमन के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण का तथा अग्नि का स्तंभन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्नि पर आसन लगाना और अग्नि पर तैरना इत्यादि क्रियाओं के कारणभूत प्रयोगों का वर्णन करती है। वो प्रयोग कैसे करना है, उसमें तंत्र मंत्र सब अवेलेबल था उनके लिए। तंत्र भी लिखा है ना, इन्हें टेक्निक, खाली मंत्र ने हमें ऐसा लगता है रे कुछ ऐसी बात है, ऐसी नहीं, उस प्रकार का उनके वो तंत्र भी थे अवेलेबल। स्थलगता नाम की चूली का कुलाचल, मेरु, महीधर, गिरी और पृथ्वी आदि पर चपलता पूर्वक गमन के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। मायागता नाम की चूली का महेंद्र जाल का वर्णन करती है। वो तिलस्मी वगैरह कहते ना, इंद्रजाल, महेंद्र जाल, महाइंद्रजाल, इंद्रजाल ने जो सम्मोहन क्रिया आदि जो होती है वैसी बातें, अकेला हिप्नोटिज्म नहीं तो इसमें भी आते हैं ना, वो तिलस्मी यानी जो अद्भुत ऐसे कोई चमत्कारिक बातें होती है ना, जादुई विद्याएं। रूपगता नाम की ये इंद्रजाल ही कहते हैं ना, जादू जो दिखाते हैं ना उसको इंद्रजाल कहते हैं। ये महाइंद्रजाल की बात है यहाँ पर, महेंद्र जाल। हाँ, रूपगता नाम की चूली का सिंह, हाथी, घोड़ा, रुरु जाति का मृग विशेष, मनुष्य, वृक्ष, हरिण, बैल, वृक्ष भी हो, खरगोश और पसय अर्थात मृग विशेष आदि के आकार रूप से अपने रूप को बदलने की विधि का और नरेंद्रवाद वर्णन करती है। नरेंद्रवाद, नरेंद्रवाद का वर्णन करती है। नरेंद्र वाद, वाद यानी वाणी। देखो नीचे लिखा है, नीचे से दूसरे 6 नंबर लिखा है ना, रूपगतायाम, पहले बीच में जगह छोड़ दी, चेतन अचेतन द्रव्याणाम स्वपरावर्तन हेतु, ये चेतन और अचेतन द्रव्यों के स्वपरावर्तन के हेतुभूत मंत्र तंत्र तप आदि नरेंद्रवाद वाद चित्राचित्र भाषा देश निरूप्यन्ते, यानी विविध प्रकार की भाषाएं उसका उसमें वाद यानी भाषा नरेंद्र भाषा जो आकाशगता नाम की चूलिका है वह आकाश में गमन करने गमन के कारणभूत मंत्र तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। अब ये पांचों ही उन्होंने अर्थाधिकार बता दिए। अब 14 पूर्व की बात बता रहे फिर से। हाँ, 14 पूर्वों के नाम पहले बता चुके, फिर दोबारा ले रहे हैं। हाँ, वहां तो नाम और उनके कितनी संख्या है पदों की वो बताए थे। जो उत्पाद पूर्व है वह नाना नयों के विषयभूत तथा क्रम अक्रम रूप अर्थात पर्याय दृष्टि से क्रम से होने वाले और द्रव्य दृष्टि से अक्रम से होने वाले। क्रम अक्रम रूप का अर्थ क्या है? पर्याय दृष्टि से क्रम से होने वाले और द्रव्य दृष्टि से अक्रम से होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य का वर्णन करता है। ये उत्पाद पूर्व अग्रायणी नाम का पूर्व अक्रम, यानी वो तो देखो अक्रम में एक साथ रहने वाले, द्रव्य में पर्याय जो ज्ञान दर्शन चरित्र आदि के पर्याय एक साथ भी है ना, या उसको अक्रम से गुणों को भी ले सकते हैं और क्रम में पर्याय उनको ले सकते हैं, इस तरह से भी उसको हम क्रमवर्ती और सहवर्ती कहते हैं, वही बात है यहाँ पर। अग्रायणी नाम का पूर्व 700 सुनय और दुर्नयों का तथा 6 द्रव्य 9 पदार्थ और 5 अस्थिकायों का वर्णन करता है। वीर्यानुप्रवाद नाम का पूर्व आत्मवीर्य परवीर्य उभय वीर्य क्षेत्र वीर्य काल वीर्य भव वीर्य और तप वीर्य आदि का वर्णन करता है, अर्थात इसमें प्रत्येक वस्तु की सामर्थ्य का वर्णन रहता है। ये क्षेत्र का भी काल का भी तप का भी सबका सामर्थ्य अपना अपना। 4 नंबर अस्थि नास्ति प्रवाद नाम का पूर्व स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा समस्त द्रव्यों के अस्तित्व का, स्वरूपादि चतुष्टय ने स्वद्रव्य क्षेत्र काल व स्वरूप चतुष्टय उससे अस्थि है और परद्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा उनका नास्तित्व का प्ररूपण करता है। ये समझ में है? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्थि है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति है। तात्पर्य यह है, यह पूर्व नाना दुर्नयों का निराकरण करके नयों के द्वारा ग्रहण करने योग्य विधि और प्रतिषेध रूप धर्मों का वर्णन करता है। विधि यानी अस्थि और प्रतिषेध यानी नास्ति। विधि रूप धर्म और प्रतिषेध रूप धर्म वस्तु में ही है तो ये विधि और प्रतिषेध हुआ। ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व ये पांचवा जिसमें से इसका ओरिजिन है ना कषाय प्रावृत का, ये ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनपर्यय ज्ञान, यह रहे ज्ञान मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान का वर्णन करता है। तात्पर्य यह है कि यह पूर्व प्रत्यक्ष और अनुमान आदि समस्त प्रमाणों का, ये अनुमान आदि भी प्रमाण है हो, तथा जिसका अन्यथा चाहिए अन्था हुआ है, जिसका अन्यथा अनुपपत्ति यानी इसके बिना ये नहीं संभव है, अपनी भाषा में नॉट अदरवाइज पॉसिबल वो आसानी से समझ में आता है। हाँ, अपनी भाषा लगती है और ये संस्कृत अपनी नहीं लगती, दूर किसी की लगती है। अन्यथा अनुपपत्ति ही एक लक्षण है ऐसे हेतु के स्वरूप का, उसको हेतु कहा जाता है। कोई बात सिद्ध करनी है तो वो हेतु से सिद्ध की जाती है, वो भी एक प्रमाण है। सत्य प्रवाद, ये 6 नंबर का है। सत्य प्रवाद नाम का पूर्व व्यवहार सत्य आदि 10 प्रकार के सत्यों का, ये वचन योग आदि में हमने देखे थे, मनोयोग वचन योग में, हाँ, जनपद सत्य वगैरह होते हैं ना 10 प्रकार, जैसे अपनी अपनी भाषा में हम चावल कहेंगे, भात कहेंगे, वो कूड़ो कहेंगे, कोई अन्नम कहेंगे, तो उनकी उनकी भाषा में वो सत्य है, तो उसको सत्य कहेंगे, ये व्यवहार सत्य। और सप्तभंगी के द्वारा समस्त पदार्थों के निरूपण करने की विधि का कथन करता है, ये सत्य प्रवाद हुआ। 7वां नंबर आत्म प्रवाद नाम का पूर्व जीव विषयक नाना प्रकार के दुर्नयों का निराकरण करके जीव द्रव्य की सिद्धि करता है। जीव है वह उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वरूप त्रिलक्षणात्मक है, शरीर प्रमाण है, स्वपर उष्ण का प करना, स्वपर प्रकाशक है, सूक्ष्म है, अमूर्त है, व्यवहार ने से कर्म फलों का और निश्चय ने से अपने स्वरूप का भोगता है। ये मैंने जो बताया ना, कत्ता या भोगता या इसी कोई उसमें जीवकांड में ये गाथा दी थी उन्होंने, इसमें कुछ लिखा है कि नहीं, ये जो बात बताए ना, शरीर प्रमाण है, स्वपर प्रकाश है, सूक्ष्म है, अमूर्त है, व्यवहार ने से कर्म फलों का और निश्चय ने से अपने स्वरूप का भोगता है, व्यवहार ने से शुभाशुभ कर्मों का और निश्चय ने से अपनी चित पर्यायों का करता है, व्यवहार ने से अनादि बंधन बद्ध है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, इत्यादि रूप से यह पूर्व जीव की सिद्धि करता है। यानी जिस पूर्व की हम बात करें ना, कौन से पूर्व की बात करें, हाँ, आत्मप्रवाद पूर्व, यह उक्त कथन का तात्पर्य समझना चाहिए। कुछ आचार्यों का यह मत है कि आत्मप्रवाद वो हुआ नाम का पूर्व सर्व द्रव्यों के आत्मा अर्थात स्वरूप का वर्णन करता है। आत्म यानी स्व, तो सभी द्रव्यों के आत्मा कहने सभी द्रव्यों का अपना स्वरूप बताना यहाँ उसका विषय है। कर्म प्रवाद करो, प्रपाद हुआ है, कर्म प्रवाद नाम का पूर्व समवदान कर्म, इरियापथ कर्म, क्रिया कर्म, तपक कर्म, अधक कर्म का वर्णन करता है। देखो विशेषार्थ, ये कर्म के बारे में विशेषार्थ बताएंगे। ये कर्म प्रवाद 8वां हुआ है ना, कर्म अनुयोग द्वार में कर्म के 10 भेद गिनाए हैं, नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापथ कर्म, तपक कर्म, क्रिया कर्म और भाव कर्म। ये भी हमने धवला पुस्तक में वो कर्म का एक पूरा चैप्टर इस पर था। किसी का कर्म ऐसा नाम रखना नाम कर्म कहलाता है, ये तो आसान है, नाम स्थापना हमने बहुत बार देखा था। चित्र आदि में तदाकार रूप से और अक्ष आदि में अतदाकार रूप से कर्म की स्थापना करना स्थापना कर्म कहलाता है। ये अक्ष किसको कहते हैं, अक्षत नहीं, अक्ष इन्होंने बराबर होता है, हा? वो नहीं अक्षय ने जो फांसे होते सोंगटी जिसको इन्होंने बताया सोंगटी, ये जो अक्ष का अर्थ होता है छोटी लकड़ी का, जैसे क्यूब करते हैं उसको या लंबा क्यूब करते हैं उसको अक्ष कहते हैं, वो प्यादा अलग हाँ हाँ, नहीं वो बात है, ये अक्ष अलग बात है, उसको अक्ष कहते हैं। हाँ
पास
उनको पास है नहीं नहीं उसी में ये कर्म ऐसा कहेंगे, वो तो पासे की बात अलग है। मान लेते ये पेंसिल है, हाँ अभी है ना, तो इसमें हमने कह दिया ये कर्म है, ये सपना, ये अवतदाकार सपना। किसी में भी कहो ना, अक्षय आदि कहा ना उन्होंने, आदि में कुछ भी रखो, या ये लकड़ी का कोई क्यूब है, ये अभी हमने सोपारी रखी और सोपारी को करिए ये कर्म है, हमने 7-8 सोपारी रखी तो हम कहेंगे ये ध्यानावरण कर्म है, ये दर्शनावरण कर्म है, ये भी कर्म हो जाएगा। कोई भी कर्म, यहाँ अकेले द्रव्य कर्म की बात नहीं है। हाँ उसमें स्थापना कर देना। चित्र आदि में, चित्र में हम कहते ना, वो चित्र में स्थापना करना, वो स्थापना हमने करना को कर्म कहा। कर्म यानी ज्ञानावरण आदि कर्म की बात यहाँ नहीं है। करना एक कृति हो गई ना, उसको स्थापना की, वो स्थापना कर्म हुआ। हमने किसकी स्थापना, चित्र में हमने कहा ये गाय है, हाँ वो गाय की, वो करना करने की बात है ना। ये स्थापना कर्म समझ में आए, मिट्टी का बैल बनाया हमने, बनाया ना कुछ क्रिया कर्म किया वहां पर, तो हमने वो तदाकर वो कर्म हुआ जाए, स्थापना कर्म हुआ है वहां पर। जिस द्रव्य की जो सद्भाव क्रिया है वह सब द्रव्य कर्म कहलाता है। ज्ञानादि रूप से परिणमन करना जीव की सद्भाव क्रिया है, सद्भाव क्रिया। रूप रस आदि रूप से परिणमन करना पुद्गल की सद्भाव क्रिया है। तो प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सद्भाव क्रिया है। वो द्रव्य कर्म है ना, वो ज्ञानावरणादि की बात नहीं हो। द्रव्यों की क्रिया, एक क्रिया के लिए कर्म शब्द आता है यहाँ पर। ये कार्य कर रहे हैं ना, वो उसकी क्रिया है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों की सद्भाव क्रिया भी समझना चाहिए। मनोवचन और काय के भेद से प्रयोग कर्म तीन प्रकार का है। इस प्रकार प्रयोग कर्म में योग का ग्रहण किया गया है। पहले भी प्रयोग शब्द आया था ना, वहां योग की बात, हाँ तीर्थंकरों की वाणी में प्रयोग कर्म, प्रयोग से होता है क्या, ऐसे ही होता है ऐसा पूछा था। ये प्रयोग कर्म मन वचन और काय के द्वारा जो क्रिया होती है उसके यहाँ प्रयोग कहा। योग मिथ्यात्वादी कारणों के निमित्त से आयु कर्म के साथ 8 प्रकार के और आयु कर्म के बिना 7 प्रकार के और 10वें गुणस्थान में आयु और मोहिनी के बिना 6 प्रकार के कर्मों का ग्रहण करना वो समवदान कर्म कहलाता है। जिसको हम कर्म बांधना कहते ना, तो यहाँ कर्मों का ग्रहण, हाँ तो जब जब आयु का बंध होता है तो आयु सहित 8 ही कर्म बनते हैं, तो वहाँ 8 कर्मों का बंध है। जब आयु नहीं बनती है तब 7 कर्मों का ग्रहण होता है। अब 10वें गुणस्थान में मोहनीय का नहीं होता है, आयु तो पहले ही 6 के बाद, तो आयु का भी ग्रहण यानी 7वें के बाद नहीं होता है, तो इसको छोड़कर 6 का ही होता है। और ऊपर ये उसको समवदान क्रिया कर्म कहते। हाँ समवदान कर्म यानी कर्मों का जो ग्रहण होता है उसको यहाँ कहा। द्रव्य कर्मों की बात, उद्दावन विद्यावन परिद्दावन और आरंभ के करने से जो कर्म उत्पन्न होता है उसे अधक कर्म कहते हैं। हाँ उसका अर्थ जीव के ऊपर उपद्रव करना उद्दावन कहलाता है। अंगों का छेदना आदि व्यापार विद्यावन कहलाता है। संताप का पैदा करना परिद्दावन कहलाता है और प्राणों का वियुक्त करना आरंभ कहा जाता है। यानी दूसरे जीवों को उपद्रव करना, उनके अंगों को छेदना, उनको संताप उत्पन्न करना, तो उसको संताप उत्पन्न हुआ तो उसका अपने को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसको अधक कर्म कहते। एक जीव दूसरे शरीर में स्थित जीव के साथ जब उद्दावन आदि क्रिया रूप व्यापार करता है तब वह अधक कर्म कहा जाता है। ये सारे को अधक कर्म कहलाया। हाँ हाँ बिल्कुल। वो हिंसा ही हो गया ना, संताप को पैदा करा ना, तो बिना इच्छा के पैदा किया उसने, क्या किया यानी उसकी भी कुछ क्रिया हो गई वहां पर। हाँ, यह अधक कर्म कहा जाता है। यह अधक कर्म आहार जो कहते ना, उसमें भी वो प्राण हिंसा आरंभ की अपेक्षा वो क्योंकि करवाया, ये मुनियों के लिए वो अधक कर्म कहा जाता है। प्राणों का वियुक्त करना आरंभ। आरंभी हिंसा है। ईर्या का अर्थ योग है और पथ का अर्थ हेतु है। इसका यह अर्थ हुआ कि केवल योग के निमित्त से, केवल यानी मात्र योग के निमित्त से जो कर्म होता है वह ईर्या पथ कर्म कहलाता है। कर्म यानी क्रिया, कौन सी क्रिया होती है, कार्य क्या कर रहे हैं, यह कर्म छद्मस्थ वितराग। ये छद्मस्थ वितराग किसको कहना? हाँ, तो 11-12 दोनों का नाम छद्मस्थ वितराग है, उसमें कुछ डिफरेंस करेंगे? दोनों ही छद्मस्थ वितराग है ना, 11वें वाले और 12वें वाले। क्या अकेले 12वें वाले छद्मस्थ वितराग है? दोनों है, तो उनके साथ और कुछ नाम जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, एक उपशांत कषाय वाले और एक हाँ क्षीण मोह। और संयोग केवली के होता है, अयोग को क्यों छोड़ा? हाँ शोभा दे, अरे 10 बज के आगे गए, अच्छा लेट चालू किया, कोई बात नहीं। हाँ, तो संयोग नहीं, मैंने अभी देखी 13वें में योग है, संयोग सयोग लिखा ना, और अयोग यानी योग नहीं है, तभी योग के कारण होने वाला वहां कर्म भी नहीं है। ये 3 लाइन पढ़ लेती हूँ। 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य तपों के भेद से तपक कर्म 12 प्रकार का होता है, ये मुनियों के होता है। जिन देव आदि की स्तुति वंदना करते समय जो कृतिकर्म किया जाता है उसे क्रिया कर्म कहते हैं। जो जीव कर्म विषयक शास्त्र को जानता है और उसमें उपयुक्त है वह भाव कर्म कहलाता है। जीव को भाव कर्म कहा। इस प्रकार कर्म प्रवाद में कर्मों का वर्णन है। यहीं रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा।